किंतु अंततः एक ही होते हैं। शिशुपाल जैसे व्यक्ति का उनके द्वारा संहार किया जाना इतना ही शुभ है जितना कि श्रद्धावान की रक्षा के लिए किए जाने वाला कार्य। उन सारे योद्धाओं जिन्होंने अर्जुन के विरुद्ध युद्ध किया था, किंतु युद्ध भूमि ने भगवान के कमलवत मुख का दर्शन किया था, उसी तरह भगवत धाम प्राप्त किया जिस तरह भगवान के भक्त प्राप्त करते हैं। दृष्टा की आंखों को अच्छा लगने वाले, ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब युद्ध भूमि के दूसरे पक्ष के योद्धाओं ने भगवान कृष्ण को मोर्चे पर देखा तो उन्होंने उनके सौंदर्य को सराहा और ईश्वर के प्रति उनकी सुप्त भावना जागरूक हो उठी। शिशुपाल ने भी भगवान को देखा, किंतु उसने उन्हें अपने शत्रु के रूप में देखा, जिससे उसका प्रेम जागृत नहीं हुआ। इसीलिए शिशुपाल ने भगवान के शरीर की निर्विशेष ज्योति ब्रह्म ज्योति में लीन होकर भगवान से तादात्म्य प्राप्त किया। अन्य लोगों को जो तटस्थ थे, जो न तो मित्र थे न शत्रु, किंतु भगवान के मुख के सौंदर्य को सराहने के कारण यत्किंचित भगवान के प्रेम में थे, तुरंत वैकुंठ लोक भेज दिया गया। भगवान का निजी धाम गोलोक वृंदावन के प्राप्त और वे धाम जहाँ उनके स्वांश निवास करते हैं वैकुंठ लोक कहलाते हैं, जहाँ भगवान नारायण रूप में विद्यमान रहते हैं। हर जीव में भगवत प्रेम सुप्त है और भगवान की भक्ति की समुची विधि की सुप्त नित्य भगवत प्रेम को जागृत करने के लिए होती है। किंतु ऐसी दिव्य जागृति मोटी यहाँ होती है, जिन लोगों में भगवत प्रेम पूरी तरह जागृत हुआ रहता है वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन के लोक में जाते हैं, किंतु जिन लोगों में संयोगवश या संगति के द्वारा भगवत प्रेम अभी अभी जागृत हुआ होता है वे वैकुंठ लोक भेज दिए जाते हैं। सात्विक दृष्टि से गोलोक तथा वैकुंठ में, तात्विक दृष्टि से गोलोक से गोलोक और वैकुंठ में कोई अंतर नहीं होता, किंतु वैकुंठ में भगवान की सेवा असीम ऐश्वर्य द्वारा की जाती है, जबकि गोलोक में उनकी सेवा सहज स्नेह द्वारा की जाती है। यह भगवत प्रेम भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से जागृत होता है। यहाँ पर पार्थास्त्र पूतः शब्द महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान का सुंदर मुखड़ा देखा था, उन्हें पहले अर्जुन ने अपने बाणों के प्रहार से शुद्ध बना दिया था। भगवान संसार का भार हल्का करने के उद्देश्य प्रकट होते हुए और अर्जुन उनकी ओर से युद्ध करके उनकी सहायता करते हैं। अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से युद्ध करने से इनकार कर दिया था और अर्जुन को युद्ध में लगाने के लिए भगवत गीता का संपूर्ण उपदेश दिया गया था। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन ने अपने निर्णय के समक्ष युद्ध करना बेहतर समझा। इस तरह अर्जुन ने भगवान के संसार के भार को कम करने के उद्देश्य में सहायक बनने के लिए युद्ध किया। शुद्ध भक्त सारे कार्य भगवान की ओर से संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त के पास करने के लिए कुछ भी नहीं रहता। अर्जुन द्वारा संहार किया जाना स्वयं भगवान द्वारा किए जाने वाले संहार के तुल्य था। जो भी अर्जुन किसी शत्रु पर बाण चलाते वह शत्रु सारे भौतिक कलमश से शुद्ध बनकर वैकुंठ जाने के पात्र बन जाता। जिन योद्धाओं ने भगवान के चरण कमलों की प्रशंसा की तथा सामने से भगवान के मुख को देखा, उनमें सुप्त भगवत प्रेम जागृत उठा और इस तरह वे लोग शिशुपाल की तरह ब्रह्म ज्योति के निर्विशेष दशा में नहीं अभी तो सीधे ही वैकुंठ लोग भेज दिए गए। शिशुपाल भगवान की प्रशंसा किए बिना मरा, किंतु अन्य लोग भगवान की प्रशंसा करके मरे थे। दोनों भी को आध्यात्मिक आकाश में भेज दिया गया, किंतु जिनमें भगवत प्रेम जागृत हो चुका था वे दिव्य आकाश के लोगों में भेज दिए गए। उद्धव उस पर ऊपर से शोक कर रहे थे कि उनका अपना पद कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के योद्धाओं के भी न्यून है, क्योंकि उन लोगों को तो वैकुंठ लोक मिल चुका था, जबकि उद्धव भगवान के तिरोधान का शोक ही करते रह गए। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजातं सगणा रघुनाथं तं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखामितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्कृते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तथैव चान्ये नरलोक वीरा या आहवे कृष्ण मुखारविंदम् नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामम् पार्थास्तु पूतः पदमापुरस्य। निश्चय ही कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए और आंखों को अच्छा लगने वाले कृष्ण के कमल मुख को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। ये अनुभूति उद्धव जी की है। उद्धव जी भगवान के परम पार्षद बचपन से ही थे और भगवान के वियोग जैसे घाव लगा हो उस पर नमक छाटते हैं ना, उसी तरह विदुर जी ने उद्धव जी से प्रश्न किया। भगवान अंतर ध्यान हो गए, उद्धव जी शून्य मनस्क रहेंगे क्योंकि भगवान का आदेश था कि आप मेरे पीछे रहना है, सबको उपदेश देना है, उद्धव गीता के द्वारा भी समझाना जो भी है। लेकिन यहाँ विदुर जी वो भगवान का स्मरण याद करा रहे हैं। हरेक श्लोक में उद्धव जी ने अपनी ये दुख भरी स्थिति बताई। इसका ही तो दुख है हमें, ये याद आती है उसका ही दुख हमें। कितनी गहराई से उद्धव जी भगवान की आत्मानुभूति बता रहे। भगवान के विरह में अपने आप को भाग्यहीन समझना, दूसरों का तो भाग्य बहुत बड़ा है। ये देखो ना, इन लोगों ने किस कैसी कैसी गति प्राप्त, कैसे कैसे थे फिर भी कैसी कैसी गति प्राप्त कर, और हम वही के वही रहे। इसका ही तो दुख। लेकिन भगवान का ऐसा स्मरण और तीव्र स्मरण ही भगवान से विलग नहीं करता, क्योंकि भगवान का स्मरण, भगवान का स्वरूप, भगवान स्वयं अभिन्न ही होते हैं। जब भगवान का नाम अभिन्न होता है तो भगवान का स्मरण क्यों अभिन्न होगा भगवान से। फिर भी स्मरण में बहुत सारी गहराई है। स्मरण ही एकमात्र आत्मा की विरासत बनती है, विस्मरण वही उसका सारा कंभा। जो भगवान को विस्मर, और भगवान की किसी भी चीज को नष्ट करते उनका विस्मरण बनाते हैं, उनके अलावा कोई दुर्भागी है ही। फिर भी भक्त भगवान का स्मरण करके भगवान का निजी सानिध्य और वो भी गुरु वृंदावन का सानिध्य की सराहना करते हैं। तो अन्य लोग जो जो अलग अलग गंतव्य स्थान पर गए हैं, जैसे हमने पहले देखा कि यादव सिर्फ परमात्मा का ही दर्शन कर पाए
भगवान होते हुए भी,
वो कितने कंभाव्य। शिशुपाल जैसा ब्रह्म ज्योति में लटका रहा, वो भी दुर्भाग्य। और ये तो सिर्फ अनजाने में सिर्फ कृष्ण भगवान का मुखारविंद देखकर ही भगवत धाम लौट गए, देखो तो सही। और हम यही के पड़े और अर्जुन की बात आ रही है, अर्जुन के पांवों की बात, अर्जुन के बाण सभी को पवित्र कर दिया। जिन जिन को चोट लगी वो गए काम से, यानी कि पवित्र होकर भगवत धाम चले गए, गए काम से नहीं ऐसे सीधे पहुंच गए भगवान का। उद्धव जी कितनी गहराई से बोल रहे हैं, और प्रभुपाद जी और गहराई से समझा रहे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का विशुद्ध भक्त अपने लिए काम नहीं कर, भगवान की प्रति के लिए। जब अर्जुन लड़ने के लिए मना कर रहा था तो दूसरे ही अध्याय में भगवान ने उसका सारा चौपट कर दिया, सारे आर्ग्यूमेंट खत्म कर दिए। लेकिन वो समझ नहीं रहा था, आत्मा और शरीर में भेद बताकर जो आत्मा कैसे मुक्त हो सकता है ऐसे भी बात। लेकिन भगवान वो मुक्ति के लिए भी अर्जुन को ज्यादा सराहते नहीं, कृष्ण भावना युक्त कर्म करने के लिए उसे प्रेरित करते हैं। भगवान अपनी इच्छा दूसरे ही अध्याय में प्रकट करते हैं। जब आत्मा को वास्तव में कुछ करना नहीं होता है, लेकिन जीव यानी कि आत्मा भौतिक शरीर में जब आता है तो जबरदस्ती से उसे काम करना पड़ता है, उसे कुछ करना नहीं होता फिर भी काम करना पड़ता है। यदि काम ही करना पड़ता है तो कैसे काम करते ये सारे चुंगाल से छूटे, उसका भी मार्ग बता देते हैं। क्या कहते हैं, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। यहां भगवान अपनी इच्छा बता देते हैं, अर्जुन सिर्फ लड़ाई के लिए लड़, लड़ाई के लिए लड़ यानी जो लड़ाई ही करनी है, युद्ध करना है, तो उसमें जय और पराजय की भी चिंता नहीं करनी चाहिए,
कर्तव्य पालन।
सुख और दुख मिलेगा उसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, लाभ और गैर लाभ दोनों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कर्तव्य शरीर को करना ही पड़ता है। मुक्त जीव को कुछ करना नहीं होता, भगवान को कुछ करना नहीं होता, इसी तरह भगवान के अंश को भी कुछ नहीं करना होता। सही, तो ततो युद्धाय युज्यस्व, ततो यानी कि इसी तरह ऐसा अनुसरण करके हमें युद्ध करने की जिम्मेदारी उठानी लेनी चाहिए। लेकिन किसकी प्रति के लिए, भगवान की प्रति के लिए। तो भगवान अपनी इच्छा बता रहे हैं कि तू लड़, लड़ने की कला बता रहे हैं, जीवन संग्राम करने की कला बता रहे हैं, और अर्जुन ने वही स्वीकार। यानी कि भगवान की इच्छा क्या है वो जान गया, वो जानकर जो जीने का मार्ग अपना लेता है। तो भगवान की तरफदारी वाला कार्य कृष्ण भावना युक्त कार्य करने के लिए तैयार होता। कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत हो, इसमें लाभ गैर लाभ जय पराजय सुख दुख समुत्व यानी दोनों बराबर। भौतिक दुनिया में जो छोड़ के ही जाना है वो लाभ गैर लाभ में बराबर ही है। भौतिक दुनिया में भौतिक संपर्क या भौतिक सृष्टि से जो पैदा हुआ हम लाभ समझते हैं, वो लाभ तो मिथ्या अहंकार के द्वारा यानी कि जो हमारी मालिकाएं नहीं है वो चोरी के द्वारा प्राप्त हुआ, तो वो छोड़ के जाना पड़ता है तो गैरला भी हुआ, तो वो लाभ क्या और गैरलाभ क्या। जो नहीं मिल रहा है उस पर हमें शोक करने की आवश्यकता नहीं, और जो चाहिए उसके लिए हमें आसक्ति नहीं बनानी चाहिए। तो दोनों के प्रति हमें संभाव इसे कहते हैं। तो जब जीना ही है तो भगवान की प्रीति के लिए क्यों ना जी, हमारी प्रीति के लिए क्यों अलग सा हिस्सा निकालते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए उसे क्या फायदा, वो तो छोड़ के जाना पड़ता। भगवान यहां सब कुछ बता देते हैं और उद्धव उसी प्रकार से उसका स्मरण करते हैं कि ऐसे अर्जुन ने जब भगवान की इच्छा वाहन करने का निश्चय करा और भगवान की इच्छा से इनको तृप्त करने के लिए उनका सारा युद्ध का कार्य उसने संभाल लिया, तो वहां उसे ये नहीं लगा कि ये मेरे गुरु को मैं मार रहा हूं, मेरे दादा को मार रहा हूं, विश्वकर्म को मार रहा हूं, कुछ नहीं करा। तो भगवान की विशुद्ध भक्ति में जब अर्जुन ने सीधा संकल्प किया कि मैं युद्ध करूंगा, गत संदेह स्थितोस्मि करिष्ये वचनं तव करके भगवान का काम करने के लिए तैयार हो गया, तो इसका मतलब है ये कृष्ण भावना युक्त तो हो गया पूरे ढंग से और पवित्र हो गया, और भगवान का कार्य करने वाले भगवान जैसा ही काम करते हैं। भगवान पवित्रम परमम भगवान है, तो अर्जुन के बाण के द्वारा घायल हुए मरे हुए ये सभी पवित्रम परमम हो गए, क्योंकि ये उसे उसे रामबाण कहते हैं। भगवान रामचंद्र जी के बाण के समान जो निश्चय उसके लक्ष्य पर जाता ही, तो ये लक्ष्य भगवत प्राप्ति का है। और दूसरा ये कहा जाए कि श्री प्रभुपाद जी ने सीधे सचोट रूप से यानी चोट यानी घाघर में और जहां चोट लगती है तो ऐसे मर्म भेदी वाक्यों द्वारा हमें समझाया कि ये कृष्ण भावना का ही सारा परिचय है। कृष्ण भावना में भगवान की इच्छा क्या है वो जानकर भगवान की प्रति के लिए वो कार्य करने की चेष्टा करनी चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार का पूर्व योजित संकल्प चाहे लाभ के लिए है गैर लाभ के लिए है सोचना ही नहीं चाहिए, इसकी आवश्यकता ही नहीं। तो ये कृष्ण भावना युक्त कर्तव्य भगवत प्राप्ति कराता है, तो उद्धव जी क्यों नहीं सोचेंगे ऐसे बाणों द्वारा पवित्र हो चुके चाहे दुश्मन भी क्यों न हो वो भी भगवान का भगवान धन पहुंच गए। लेकिन यहां दूसरी और बात बताई है, भगवान श्री कृष्ण नयनाभिराम कहलाते हैं, आंखों को आराम देने वाले ऐसी दृष्टि भगवान के मुख कमर की होनी चाहिए। भक्तों को भगवान का मुख देखने की ही ज्यादा भावना होती है। हम समझ रहे हैं कि मुख देखते हुए ही हमें हमें आइडेंटिटी का पता चलता है, भगवान की व्यक्तित्व की पहचान हमें मुखारविंद से होती है। लेकिन प्रभुपाद जी सिखाते हैं कि मुखारविंद के बजाय पहले सेवा करो, यानी कि चरण कमल से हमें परिचय करना चाहिए। जो शरण लेता है तो भगवान की साथ किसी न किसी भाव में, किसी न किसी संबंध में वो भक्ति करने का मौका प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने भगवान के साथ शेक हैंड किया है, चरण कमल तो पकड़े ही थे पर बाद में भगवान ने हाथ मिला। लेकिन हम सीधे ही यदि मुखारविंद पर अपनी दृष्टि रखना चाहते हैं तो वो ठीक नहीं। तो सर्वप्रथम शरणागति, शरणागति सेवा द्वारा टकती है और बाद में अन्य भाव की उपस्थिति पैदा होती है। तो धीरे धीरे हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब भगवान की इच्छा हो तो सीधे युद्ध में लड़ते लड़ते ही भगवान का मुख दिखाई दिया हो, और यदि किसी ने ऐसे सुंदर मुख देखकर सुंदरता की भी सराहना की तो मरते मरते वो सीधे वैकुंठ धाम में जाने के लिए भी लायक हो गए। वो भगवान की स्वतंत्र इच्छा है। हम समझ रहे हैं कि हम भक्तों को इतना आसान नहीं है, काफी भक्तों की रगड़ होती है भगवत प्राप्ति के लिए। और जहां तक रूप गोस्वामी इत्यादि हमें आग्रह करके विधि भक्ति में ही आपकी रगड़ होनी चाहिए पूरे पूरे, सर्वप्रथम विधि भक्ति। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कब हम ये विधि पालते रहते। लेकिन जहां तक भक्ति में उदय नहीं होता है, भगवान की हमें निष्ठापूर्वक भक्ति करने की प्रेरणा नहीं होती तो मुखारविंद देखने की क्या आवश्यकता। या मुखारविंद पर ही हमें इनके जोर पर भगवान के साथ हमारा व्यवहार करने की क्या आवश्यकता। तो स्वामी कहते कि जब तक निष्ठा नहीं जगी है तब तक हमें आकर्षण जो होना चाहिए वो सही ढंग का नहीं होगा। रति यानी कि स्वाद, स्वाद के लिए आकर्षण होना चाहिए। आकर्षण यदि है तो हम वही भावना रखेंगे कि हमें वही मिलता रहे, उसके अलावा हमें कोई संतोष देने वाला नहीं है, तो तब हम भाव प्रेम की कल्पना कर सकते हैं। नहीं तो जो भी है भगवान की विशुद्ध भक्ति के लिए हमें ये प्रयुक्ति यहाँ दी जाती है। तो उद्धव जी उसका स्मरण करके अपने आप को कोसते रहते हैं कि जहां तक वैसे भी उद्धव जी का द्वारा में तो भगवान का कितना सीधा संपर्क, भगवान का काम करते थे, सारे प्रकार की वैसे मुक्त हुए ही पुरुष थे, फिर भी इनको व्यक्तिगत रूप से ऐसा जो उनका सारा स्मरण है भगवान के विरह का, वो विदुर जैसे विशुद्ध भक्त को ही कह सकते। दूसरों की आगे रोना धोना बेकार होता है, हमारे आगे ये सब रोना धोना काफी अच्छा नहीं, क्योंकि हमारी समझ बहुत छोटी होती है। वो कहते हैं कि घायल की गति घायल जान, हम अभी तक घायल हुए नहीं है। बहुत सारी भौतिकता चिपकी है, अर्जुन के बाण हम पर कहां लगे हैं, किस पर लगे हैं कोई दावा कर सकता। और फिर भी ये सिद्धांत तो हमें बहुत आवश्यक होता है। श्री प्रभुपाद जी भगवद गीता में वही श्लोक में समझाते थे कि सर्वप्रथम हमारी बंधनों की बात है, ऋण की बात है, ऋणानुबंध जिसे कहते हैं, और जबरदस्ती से अपने कार्यों द्वारा पैदा हुआ है, कर्मों द्वारा पैदा हुआ है, और कर्मों की जंजाल जहां हमें उसका प्रतिक्रियात्मक हमें उसका फल मिलता है, तो वो फल बंधनकारी है, इसलिए उसे पाप कहा। जो कर्म बंधन करता है वो पाप कहलाता है, जो कर्म मुक्त कराता है
पुण्य कहलाता है।
पुण्य करने से
सुकृति,
वो तो थोड़ी ऊर्ध्व गति देता है स्वर्ग लोक में जाकर।
सुकृति
सुकृति तो इकट्ठी होती है, लेकिन पवित्र करने वाला है, जो पवित्र यानी शुद्ध नहीं, सिर्फ पवी नाम का नरक होता है, जो पाप हर एक पापियों को उसमें से पसार होना, यानी पापी कौन कहलाता है, जो कर्म बंधन में पसार, वो पापी कहलाता है। पाप कर्म बंधन को कहते हैं, जिन जिन को कर्म बंधन लागू है वो सब पाप कहलाते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, कोई भी कार्य करता है उसकी प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया जब बांधती है तब पाप कहलाता है। ऐसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए जो मुक्त करने वाली है, तो वो पवित्र कहलाता है। पुण्य यानी अच्छा कर्म, अच्छा कर्म में भी बंधन है। भक्ति का कार्य कोई पुण्य नहीं है, आठवां अपराध क्या है, भगवत नाम यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित एक शुद्ध सकाम कर्म कर्मकांड के समान समझना, ये कोई शुभ है पुण्य है नहीं, पवित्र। अर्जुन के बाण कि चोट जिसको लगी हो वो क्या पुण्य हो गया, पुण्य नहीं बताया, ये तो पवित्र हो गया। पूतम कौन सा शब्द है, पाथास्त्र पूतम, पूतम इन पवित्र, पूतम इन पवित्र। त्र यानी त्राणा मुक्ति करना, पवि नाम के नरक से मुक्त करना, तो ये पुण्य का काम करना, भगवान का काम करना कोई पुण्य इकट्ठा करना नहीं। पुण्य तो खत्म होता है, जैसे बैंक बैलेंस होता है उसे पुण्य कहते हैं। पिछली बार बताया पुण्य करी अमरापुरी पान अंत 84, पुण्य तो आपको स्वर्गलोक तक ले जाएगा, लेकिन फिर से 84 लाख की रगड़ चालू हो जाएगी जब खत्म हो जाएगी, फिर तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो ऋणानुबंध है, ये ऋणानुबंध भगवान की शरण लेने से ही निकलता, भगवान के कार्य करने से ही ऋणानुबंध कटते हैं। देवर्षि भूतात् नृणाम पितृणाम। नारायण किं करो नरपतिं च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कृत्यम्। जिन्होंने भगवान के चरण कमल की शरण ली है, यानी कि भगवान के कार्य कर रहा है, इनका न तो देवताओं का ऋण रहता है, न पितरों का ऋण रहता है, न ऋषियों का ऋण रहता है, न परिवार वालों का ऋण रहता है, न समाज का ऋण रहता है, किसी का। गतो मुकुंदम परिगत्य कृत्य, ये भगवान के धाम में जाएगा, किसी का ऋण नहीं। ऋण यानी प्रतिक्रिया, इनको प्रतिक्रिया का कोई बंधन नहीं है, इसलिए पाप नहीं। पाप नहीं, पाप प्रतिक्रिया के बंधन में हम जब फंसते हैं तब पाप कहलाते हैं। प्रतिक्रिया तो ऐसी होनी चाहिए जो पापी नहीं है, तो भगवान का कार्य। इसीलिए सुख दुखे समय तो लाभ लाभ जया तो युद्धाय युजस्व न पापम अवाप्स्यसि, न पापम अवाप्स्यसि। तो समत्व की भावना भौतिक संसार में बनाने के लिए हमें स्वेच्छा से कठिनाइयां स्वीकार करनी चाहिए। स्वेच्छा से जहां देखो वहां सब अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। वृंदावन आए तो भी हमें क्या लाभ हो रहा है, क्या गैर लाभ हो रहा है, उसका ही देख रहे हैं। लेकिन भगवान का काम देखने के लिए हमें यदि भगवान की तरफदारी वाला सोचना चाहिए, उसमें लाभ हो तो ठीक है, लेकिन स्वयं को तो ऐसा दर्श नहीं होना चाहिए। नहीं तो एक अहंकार हो जाएगा तो मैंने भी भगवान की भक्ति की है। भक्ति स्वतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, लेकिन भक्त स्वतंत्र है। दोनों की परतंत्रता, इनकी ताबेदारी तो भक्त को स्वीकार नहीं पड़ेगी, उनके कहे अनुसार भी हो सकता है। भक्ति के नियमों का पालन करते ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस ढंग से जब कोई भावना पर ही सीधा चला जाए तो उद्धव जी की ये भावना को कौन अच्छी तरह से समझता है। मनोभिराम हो सकता है, मनोभिराम हो सकता है, लेकिन नयनाभिराम नहीं हो सकता। हम समझते हैं कि जब तक राधा श्याम सुंदर के सामने आए तो राधा रानी को ही देखते हैं, श्याम जी को मारू गोल राधा रानी बहुत दिखाई देती है। सारी दुनिया में हमारे राधा रानी जैसी कोई है ही नहीं। अच्छी बात है, लेकिन नयनाभिराम है इसीलिए, लेकिन उनके सामने चिपकने के लिए काफी लड़ाई भी होती है। सही, नयनाभिराम, लेकिन मनोभिराम वो चंचल होता है। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रिया का फल मिल रहा है और हम बंधन में आ जाते हैं। सही, तो मनोभिरामा क्या? बवौषधि भव मनोभिरामा। यदि मन को आराम होता है तो वो तो बवौषधि कहां से लेनी होती है? वो भवरोग की दवा कान में डालनी पड़ती है, कानों द्वारा लेनी पड़ती है। क्या?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कह उत्तम श्लोक गुणानुवाद कुमान विरिज्य बिना पशुग्र। भगवान श्री कृष्ण उत्तम श्लोक कहलाते हैं, उत्तम श्लोक। इनका गुणगान बहुत उत्तम श्लोकों द्वारा होता है। तो कौन लोग नहीं गा सकते जब आत्मा की सफाई नहीं कर चुका, जिसकी आत्मा जगी ही नहीं, जो आत्महा होता है, स्वयं की आत्मा को जगाना नहीं चाहता है, वो भी आत्मा है और दूसरे की आत्मा को भी उसके शरीर में से जबरदस्ती से निकालना चाहता है, वो भी आत्मा है। तो आत्मा कुमान विरजित बिना पशुग्न, पशुग्न यानी आत्मा है। तो भगवान श्री कृष्ण की ऐसी मति श्रील प्रभुपाद जी यहां बताते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ही जागृत होता है। इसीलिए पार्थास्त्र भूत शब्द महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान का सुंदर मुखड़ा देखा था, उन्होंने पहले अर्जुन ने अपने बाणों के प्रहार से शुद्ध बना दिया था। तो कम से कम हमें युद्ध क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन कौन से बाणों का प्रहार द्वारा हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है। महामंत्र का प्रहार ये जोली है, लेकिन उसे उसमें माला में 108 बुलेट है, तो उसके प्रहार अपने पर करने चाहिए, तो उसकी शुद्धता हमें प्राप्त हो जाएगी, है ना। मशीन गन चलाओ, बाणों मत चलाओ, वाघ बाण, उसे वाघ बाण कहते हैं, वाक्य रूपी बाण सीधे हृदय में पहुंच जा रहे हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इस तरह जो हमें भगवान के महामंत्र का वाक बाण मिला है, उसे हमें शुद्ध बनाने की आवश्यकता है। तो इस तरह अर्जुन की भांति हम भी भगवान की ओर से कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगे और भगवत धाम वापस जाने के लिए सक्षम बन जाए। तो किसी को कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण, मुझे एक व्यक्ति दान करता है स्वर्ग जाने की इच्छा से, तो उस कार्य को हम क्या कहेंगे? और दूसरा व्यक्ति दान करता है निष्कामता से, उस कार्य को क्या कहेंगे?
पहले वाला पुण्यशाली कहलाता है और दूसरा भक्त कहलाता है, भगवत भावना में जीने वाला।
दूसरे से हमें कृष्ण की प्राप्ति होगी
तो और क्या?
आप लोग हंसते क्यों? मेरी समझ नहीं आता।
नहीं,
जब प्रश्न करते हैं तो वो तत्व से संबंधित होता है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए।
यहाँ
रामधन ऐसी कोई नाट्य लीला नहीं हो रही
है। हरि बोल प्रभु जी।
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण।
तो
भगवत धाम नहीं चाहता, वो देवताओं के लोक में जाएंगे, वहां स्वर्ग लोग हैं।
वो भी दूसरे का जो फल है,
हैं?
पहले का फल तो स्वर्ग लोक में जाएगा।
हाँ,
और दूसरे का फल जो है कृष्ण की प्राप्ति
अवश्य। हमने ये कहा कि कहा और कहा जाएगा, यानी कि कृष्ण भगवान के पास ही जाएगा, और तो कोई गति बताई नहीं। भगवान का काम करने वाले भगवान के पास जाते हैं।
यहाँ जो अर्जुन का बाणों का फल बताया गया है पवित्रता, कि वो पवित्र हो, तो इसका अर्थ हम ये ले सकते हैं कि जो हम कष्ट भोग रहे हैं, अगर हम उसको निष्कामता से लें, ये सोच करके लें कि हमने जो पूर्व जन्म में दुष्कर्म किए हैं, उनके फलस्वरूप ही हमको कष्ट मिल रहे हैं, और उनकी हम प्रतिक्रिया ना करें, इसका मतलब हम पवित्र हो जाएंगे।
आपने इसमें भगवान का तालमेल नहीं रखा, आपने जितना बोला उसमें निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन निष्काम कर्म क्या अकर्म है? दूसरों के लिए काम करना, स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए काम करना निष्काम कर्म कहलाता है, लेकिन क्या वो भगवान का कर्म है? भगवान कहते मेरे अकेले के लिए ही जो कर्म होता है वो अकर्म कहलाता है, नहीं तो सर्व का बंधन करता होता है।
और जैसे एक ग्रस्त आदमी है,
है?
एक ग्रस्त है,
हाँ?
तो उसे ग्रस्त में रहकर के सारे काम करने पड़ते हैं, बच्चों को भी पालना पड़ता है, जीविका भी कमानी पड़ती है, और दूसरे काम भी करने पड़ते हैं, तो ग्रस्त उसको दो दृष्टि से कर सकता है। एक तो उनको अपने लिए कर सकता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। एक इसलिए कर सकता है कि ये सारे काम है मुझे भगवान ने दिए हैं, और कर्तव्य रूप में कर सकता है। तो
भगवान
करने पड़ेंगे तो किस रूप से करना चाहते हैं?
ओके, भगवान के लिए यदि करता है क्योंकि भगवान ने दिए हैं, तो उसमें उसे देखना चाहिए कि क्या भगवान की प्रीति प्राप्त होती है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म की दृष्टि से अतः कुंभी विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्वनिष्ठ से धर्म से संसिद्धि हरितोष, भगवान के संतोष के लिए। जब भगवान का संतोष प्राप्त होता है वो तो देखना चाहिए, वो समझ रहा है कि मुझे भगवान ने दिए हैं इसलिए मैं कर रहा हूं, पर लेकिन क्या भगवान को संतोष भी प्राप्त हुआ है मेरे करने से, उसका हिसाब है?
ये कैसे देखा जाए?
हाँ, इसलिए गुरु की आवश्यकता, क्योंकि वो जानते हैं, वो जानते हैं, गुरु जानता है कि ये कार्य भगवान को प्रसन्न करने वाला है, हाँ, और मुझे प्रसन्न करता है। जैसे प्रसादात भगवत प्रसाद, सीधी लिंक बन जाती।
गीता में कहा है कि जो वर्ण आश्रम धर्म का पालन करता है वो भी मुझको प्राप्त कर देता है, फिर बताया है कि मैं बताता हूँ कैसे प्राप्त करता है, वो अपने कर्मों से मुझे पूजे तो मुझको प्राप्त कर देगा। कर्मों से पूजना किस तरीके से?
भगवान की प्रीति के लिए कर्म करना ही पूजा है, कर्म स्वयं में पूजा नहीं है, कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म किसके लिए करें तो पूजा बनती है, उसका हिसाब कौन देखेगा? कहने वाला तो कह सकता है, लेकिन कहने वाला क्या करता है? यदि करता है तो स्वतंत्र इच्छा से करता है या किसी के समझदारी के माध्यम से करता है?
नहीं, जैसे मैंने कहा ना, प्रीति तो यही हुई ना कि ये कर्म जो है मुझे भगवान ने सौंपा है, इसलिए भगवान की खुशी के लिए मैं इनको पाल रहा हूँ, तो यही तो प्रीति हुई।
भगवान ने सौंपा है
और भगवान की प्रीति के लिए ही मैं इसको कर रहा हूँ, तो यही तो प्रीति।
वो तो मान्यता बनती है, सौंपा है, लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं ने भगवान का कार्य करने के लिए भगवान से शक्ति मांगी थी, हाँ? स्वयं क्या हम प्रार्थना करते हैं कि हमें आप शक्ति दो, आपकी शक्ति आपकी सेवा में नहीं, सिर्फ परिवार का पालन नहीं, सारे समाज का पालन करने को कहा। वर्णाश्रम धर्म में देखिए, एक आदर्श गृहस्थ का सर्वप्रथम भगवान को समर्पित होना होता है। ये समर्पित कितने हैं वो देखने के लिए गुरु के माध्यम को स्वीकारना होता है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, गुरु के आदेश के अनुसार सारे कर्तव्य जो होते हैं उसके निर्देश में करने पड़ते हैं उसे आदर्श गृहस्थ को, और उसमें हरेक जीवों के लिए सारी सुविधाएं प्रदान करनी उसकी जिम्मेदारी होती है। सिर्फ अपना थोड़ा सा परिवार ही नहीं,
गुरु का क्या आदेश है ग्रस्त पालन करने के लिए, ग्रस्त पालन करने के लिए गुरु का क्या आदेश है?
गुरु का आदेश प्रभुपाद जी ने क्या बताया पता है? एक भक्त ने पूछा, वो नया नया ग्रस्त बना, यहाँ की अभी भी शादी की है, उसने श्री प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद जी नाउ आई एम मैरिड, तो हमारी क्या जिम्मेदारी? प्रभुपाद जी ने बताया, तेरी पत्नी को कह बहुत बढ़िया भोग बना, भगवान को अर्पित कर, बाद में तुम बाहर जाओ और चिल्लाकर बोलो, हे कोई भूखा है, सब आओ प्रसाद पाओ। सब आकर प्रसाद पा जाते हैं, बाद में आप खाओ, बस
हरे खुशी।
आपने तो एक बार में ही खत्म कर दिया, वो भक्त ने तीन बार पूछा और प्रभुपाद जी ने एक ही जवाब दिया, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।